لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائه عباد الله من يومنا هذا لقاء الله. أما بعد، قال الله في كتاب الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه لتنزيل رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. مؤمنين، یہ سورہ شعرا کی آج آخری کڑی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا ہے، 192 آیت ہے، اور ترجمہ اس طریقے سے ہے، اور یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے. تنزیل لفظ آیا ہے. تنزیل سے مراد یہ کہ کوئی چیز جو غیب میں ہو وہ ظاہر ہو جائے، آسمان سے اتری ہو غیب میں، اس کو ظاہر کرنے کو، اتار کے غیب سے ظاہر کرنے کو تنزیل کہتے ہیں. اور اللہ سبحانہ نے کہا کہ یہ اس کی تنزیل ہوئی ہے، غیب سے ظاہر ہوا ہے. غیب وہ ہوتا ہے جہاں کچھ دکھتا نہیں، اور ظاہر وہ ہے جس میں ہم کسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں. نزول بھی روح الامین، جسے روح الامین نے نازل، جسے روح الامین لے کر نازل ہوئے ہیں. روح الامین کون؟ جبریل علیہ السلام. امین کیوں؟ کہ جو انہوں نے وہاں دیکھا آسمان، اس کو لے کے سرکار کے پاس آئے، اور سرکار کو ویسے کا ویسے ہی بتایا جو انہوں نے، جو ان کو وہاں سے سکھایا گیا، اس کو ویسا کے ویسا سرکار کے پاس نازل کرا. اس لیے میں روح الامین کہتے ہیں. علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں. اس میں لگا ہے علی قلبک، قلب پہ نازل ہوا ہے، یہ نہیں لگا کہ آپ پہ نازل ہوا ہے. تو میزا نے بڑی خوبصورت باتیں کری ہیں، میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کیا مطلب ہے قلب پہ نازل ہونا قرآن کا روح الامین کے ذریعے. تو آغا سید محمد حسین تباہ تباہی نے کہا کہ اس سے خاص مراد یہ ہو سکتی ہے کہ رسول کا قلب، یعنی رسول کی روح، رسول کی عقل، رسول کا فہم، قلب سے مراد یہ ہے، جو کہ اتنی اعلیٰ ترین تھی، اتنی پاک تھی کہ وہ روح جب آتے تھے روح الامین جبریل علیہ السلام، تو ان کی روح ان سے کنیکٹ ہو جاتی تھی، اور وہ پھر ان کو وحی کے ذریعے قرآن سکھاتے تھے، مطلب پڑھ کے بتاتے تھے. تو جب وہ پڑھ کے بتاتے تھے، تو جب وہ لوگوں کے بیچ میں بھی رہتے تھے، تو وہ اس وقت ایک طرح سے بے ہوش ہو جاتے تھے، سیمی کوماٹوس ہو جاتے تھے، اور اس بے ہوشی حالت میں ان کو باتیں سننے میں آتی تھی اور دکھنے میں آتی تھی. اب بحث یہ کہ جو وہ دیکھتے تھے فرشتے کو، اپنی ظاہری آنکھ سے یا ظاہری کان سے دیکھتے یا سنتے تھے یا روح کے ذریعے، تو ان کہا کہ کئی بار بھائی ایسی بھی آتی تھی کہ وہ لوگوں میں ہوتے تھے اور ایک دم بے ہوشی کی حالت ہو جاتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فرشتہ آتا تھا تو لوگوں کو تو دکھتا نہیں تھا، آپ کو دکھتا تھا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو انہوں نے کوشش کری سمجھانے کی کہ اس طریق سے ہے کہ ان کو جو بھی ان کو دکھتا تھا اپنے قلب پہ دکھتا تھا، اپنی روح پہ دکھتا تھا، کیونکہ اگر ان کی وہ تو خود ہی ظاہری طور پہ ایک طرح سے بے ہوش ہو جاتے تھے، تو جو ان کی جو قلب تھا، قلب کی آنکھ تھی یا قلب کے کان تھے، اس کے ذریعے وہ اس کو جذب کرتے تھے. بلسان عربی مبین، فصیح عربی زبان میں، فصیح عربی زبان میں ظاہر ہوا. اور پانچویں یا شاید چھٹے نمبر کہنا ایسا ہے کہ अरबी जबान जो बातें बयान कर सकती है दूसरी जबान बातें बयान नहीं कर सकती है, और जो दूसरी जबान बातें बयान करती है वो अरबी जबान बयान कर देती है। ये अरबी की खासियत है। इन्नहु लफी ज़ुबरिन अव्वलीन, इससे पहले इस आयत को जाऊं दूसरी बात में कहना चाहूंगा कि इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम ने फरमाया था कि ये अरबी जबान में जाहिर हुआ है, अगर गैर अरबी जबान में जो जाहिर होता तो अरब नहीं मानते, कहते हमारी जबान में तो वही नहीं, लेकिन ना अरब ने इसको एक्सेप्ट करा हालांकि उनकी जबान नहीं मान रही। तो इसमें बताया मौलाना के नान अरब को फोकियत है अरब पे, क्योंकि उन्होंने अपनी मादरी जबान में इसको नहीं पढ़ा है, तर्जुमा पढ़ा है, फिर भी उसको मानते हैं। अरब अरब इसलिए मानता कि उसकी अपनी मादरी जबान है, अगर वो दूसरी जबान में होता तो अरब नहीं मानते, इसलिए नान अरब की फोकियत। ये पहली नाज़िल शुदा किताबों में भी है, कुरान का जिक्र दूसरी किताबों में भी नाज़िल आ चुका है, और जो किताबें अल्लाह ने भेजी उनमें उसका जिक्र है कुरान का। अवलम यकुल्लहुम आयतन अन यअलमू उलमा बनी इसराइल, क्या उनके लिए ये निशानी नहीं है कि इस किताब को उलमा बनी इसराइल भी जानते थे। उलमा बनी इसराइल जब शुरू में जब कुरान नाजिल हुआ था और जब इतनी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था तो उस वक्त बनी इसराइल उलमा काफ़ी मुसलमान हो गए थे, बाद में टेंशन पड़ा था क्योंकि वो उनको मालूम था कि उनकी किताबों में ये लिखा हुआ था कि कुरान नाजिल होगा, वो सरकार का भी लिखा हुआ था, दोनों का लिखा हुआ था, तो इसलिए वो मुसलमान हो गए। अब अल्लाह सुब्हान तआला वो बयान करा जो मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूँ, वो लव नज़लनहु अला बादिन आजमीन फअक्राहु अलैहिम मा कानू बिही मुमिनीन, अगर हम इस कुरान को किसी अजमी पर नाजिल करते और वह उन्हें इस कुरान को पढ़कर सुनाता ये लोग फिर भी उसे मानने वाले न थे। यही मैंने जो आपसे अर्ज की कि अगर ना अरब पर नाजिल करके पढ़ के सुनाता तो ये लोग मानने नहीं वाले थे, क्योंकि अरब कौम का एक ईगो था, मतलब अजमी वो किसको कहते हैं, अजमी उसको कहते हैं जो कि बात नहीं कर सकता, या वो जो साफ गुफ्तगू नहीं कर सकता, या वो जो नॉन अरब उसको अजमी कहते थे। फिर आगे आया था ये गजालिका सलकनाउ फी कुलूबिन मुजरिमीन, इस तरह हमने इसको उन मुजरिमों के दिल में से गुजारा है, गुजारने से मतलब सलकना वो भी मुजरिमों के दिल में से, इसको मतलब किसको, कुरान को। अल्लाह कहता है कुरान जब इसको मुजरिम लोग जो कि कुफार हैं, जो कुरान को झुठलाते हैं, जब कुरान सुनते हैं तो उनका गुस्सा कुरान के लिए बढ़ जाता है, तो जैसे सुनते हैं वैसे ही निकल जाता है, दिल में ठहरता नहीं कुरान, ये अल्लाह की सजा है, क्योंकि उन्होंने हक से नफरत करी तो कुरान जैसा आया वैसा गुजर जाता है। ला युमिनु भी हत्ता यरव अजाबल अलीम, और वो हरगिज इस पर ईमान न लाएंगे जब तक कि वो दर्दनाक अजाब को न देख लेंगे, यानी जब तक उन्हें मौत नहीं आ जाएगी इसी तरह हरकतें करते रहेंगे क्योंकि जिद्दी लोग हैं। फयतिहिम बक्तन वहुम ला यशअरून, ये अजाब उन पर अचानक आ पड़ेगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा, जब मौत आती है इंसान की तो मालूम नहीं पड़ता कब मर गया, वो भी अजाब शुरू हो जाता है। फयकूलू हल नहनु मुनज़रून, फिर वो कहेंगे कि क्या हमें कुछ मोहलत मिल सकती है मरने के बाद, बरज़ख में जाकर आदमी कहता जो भी गुनाहगार है जो भी खताकार है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको बचा कि कहता वापस मुझे दुनिया में भेज दो, वापस मुझे दुनिया में भेज दो कि मैं कुछ नेक अमल कर लूँ, कुछ मोहलत मिल जाए। अफबी अजाबीना यस्तअजिलू अफर आयत इमत्तानहुम सिनी सुम्मा जाहुम मा कानू युअदून, क्या ये लोग हमारे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं, ये कुफ्फार हमेशा जल्दी करते रहे, कोई भी पैगंबर आया उसने डराया तो कहते थे अभी भेज दो अजाब तुम कर सकते हो, तो इस तरह की हरकतें कुफ्फारों ने शुरू से करी है। या फिर आगे क्या करते हैं, ترجمہ: کیا آپ نے اس بات پر غور فرمایا کہ اگر ہمیں کئی برس دنیا میں لطف اندوز ہونے دیں پھر بھی وہ عذاب آ کر رہے گا جس سے انہیں ڈرایا جا چکا ہے؟ اسی لیے انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے لیے کہا کہ تم اگر ہزار ہزار برس بھی جیو تو جو عذاب آنے والا ہے کیا تم اس پہ چھٹکارا پا سکتے ہو کیا؟ تو اللہ نے یہ کہا کہ اگر ہم ان کو کچھ سالوں کے لیے عیش و آرام دیتے ہیں جو عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ آ کر رہے گا. ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرین ذکرا وما کنا ظالمین. جو سامان عیش و عشرت انہوں نے کو دیا گیا تھا وہ ان کے کسی کام نہ آیا. جو بھی دیا عیش کا سامان ہم بھی ویسٹ میں ہیں, اللہ ہم کو بچا گناہوں سے, سارا ہمارا عیش عشرت ہے, کچھ کام نہیں آئے گا قبر میں, نہ قیامت کے دن کام آئے گا. کام آئے گا تقوا. تو ہم خدا سے ڈریں, جب اس کی نعمت دیکھیں تو ڈرے خوف کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اس کو آزمائش نہ بنا ہمارے لیے اس کو برکت بنا. اور آگے ترجمہ کس طریقے سے: اور ہم نے جس بستی والے کو ہلاک کیا ان کے لیے پہلے ڈرانے والا بھیج دیتے. اللہ کیا انصاف ہے, وہ کبھی کسی بستی کو ہلاک اس نے نہیں کرا جب تک کہ ڈرانے والا نہ بھیجاؤ, پیغمبران نہ بھیجو. آج کی دنیا میں تو ساری حجتیں تمام ہو چکی ہیں, 124,000 پیغمبر آ چکے ہیں, 11 امام آ چکے ہیں, 12 امام کا انتظار ہے. اب بھی ایمان لائیں گے تو اور تقوا نہ اختیار کریں گے تو لوگ کب تقوا اختیار کریں گے؟ تو فرماتا اللہ سبحانہ تعالیٰ: اور ہم نے جس بستی والوں کو ہلاک کیا ان کے لیے پہلے ڈرانے والے بھیجے تھے جو یاد دہانی کرانے والے تھے, اور ہم ظالم نہیں ہیں. ذکرہ وما کنا ظالمین, وہ یاد دلایا کرتے تھے ہمیشہ, قیامت کی یاد دلایا کرتے تھے, خدا سے ڈرایا کرتے تھے. اس کے بعد ہی اتنا ڈراتے تھے, اس کے بعد ہی خواہش نفسانی کی وجہ سے انسانوں نے اللہ کی میسج کو قبول نہ کرا. وما تنزل به شیاطین وما ینبغی لهم وما یستطیعون انہم عن السمع لمعزولون. اب یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں, اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دوسری بات کری جو شیاطین کے بارے میں بات کری ہے, کیونکہ یہ کفار تھے, سرکار پہ دو الزام لگاتے تھے کہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس کو کوئی جن لے کے آیا ہے, یا یہ کہ یہ شاعر کا کلام ہے. تو پہلی بات کو اللہ جواب دے رہا ہے کہ جس طرح سے الزام لگاتے تھے کہ جن لے کے آیا ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے اور اس کتاب کو شیاطین لے کر نازل نہیں ہوئے, اور یہ کام نہ تو ان کے لیے مناسب تھا اور نہ ہی ان کی پس میں تھا, انہیں تو اس کی سماعت تک سے دور رکھا گیا ہے. شیاطین جنات پہلے اوپر جایا کرتے تھے آسمانوں کے اوپر تاکہ فرشتوں سے کچھ خبریں حاصل کر لیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ خبریں دے کے ملائکہ کو زمین میں بھیجا کرتا تھا. تو یہ چاہتے تھے کچھ سن لیں, مطلب تاکہ کچھ معلوم کر لیں, لیکن بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیاطین کا آنا بند کر دیا تھا. اگر سننے کی کوشش کرتے تھے تو آگ کا شعلہ آتا تھا. قرآن نے اس کا کئی بار ذکر ہے. تو ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ آ کے کچھ باتیں اللہ کے پاس لے آئیں, اور نہ ان کے لیے کام مناسب ہے, نہ تو ان کے بس میں ہے. دو لفظ آئے ہیں, وما ینبغی, نہ تو ان کے لیے شایع ہے نہ ان کے میں طاقت ہے. کیونکہ وہ شیاطین کا کیا ہوتا ہے, شیاطین کے لیے شایع تو نہیں ہے نہ ان میں طاقت ہے. طاقت تو اس لیے نہیں کہ جا نہیں سکتے, شایع تو نہیں ان کے لیے بات, شایع اس لیے نہیں کہ شیاطین کا جو فطرت ہے وہ فطرت ہے خباثت کی. ان کو خبیث چیزیں پسند آتی ہیں, ان کو جھوٹی چیزیں پسند آتی ہیں, تو ان کی فطرت جھوٹ کی طرف جاتی ہے, سچ کی طرف نہیں جاتی ہے. تو یہ قرآن حق پاک کتاب ہے, پاک کلام ہے, تو وہ ان کی فطرت کے خلاف کلام ہے. اور دوسرا کیا کہ نہ کوئی طاقت ہے سننے کی, उनको झूठी बातें अच्छी लगती हैं, वो झूठ की तरफ जाते हैं, और वो जो झूठे लोग होते हैं उनकी तरफ वो उसको लेके जाते हैं। कुरान पाक अल्लाह की किताब है, पाक अमीन फरिश्ता लेके नाजिल हुआ और पाक कल्प सरकार के लेके उतरा, तो शयातीन का उससे कोई ताल्लुक नहीं। और फिर अल्लाह तआला उन्हें तो उसकी समाअत तक से रोक दिया गया है उनकी ताकत नहीं कि जाके सुन ले। फला तदउ मा अल्लाह इलान आकर फतकून मिनल मुअज्जबीन, लिहाजा तुम अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद को न पुकारो वरना तुम भी सजा पाने वालों में से शामिल हो जाओगे। अब मीजा ने कहा कि ये आयत खुसूसन सरकार में नाजिल हुई, उसमें सभी ज़ेल में आते, सरकार में नाजिल हुई क्योंकि पैगंबर है। अच्छा, तो अब बहस ही करी मीजा ने कि ऐसा क्यों कहा गया कि लिहाजा तुम अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को माबूद को न पुकारो वरना तुम भी सजा पाने वालों में शामिल हो जाओगे। सरकार तो मासूम थी, जरूरत क्या थी इस आयत की? तो मीजा ने कहा कि सरकार मासूम तो थे, सरकार ने कभी भी गलती नहीं करी, अल्लाह के सबसे प्यारे बंदे थे ना? लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह, अगर सरकार परफेक्ट भी थे तो अल्लाह फिर भी कह सकता है कि ये सही और ये गलत है रसूल, तुम ये करना ये न करना, क्योंकि ये अल्लाह का हक है कि हर एक को बताए कि हक क्या, ताकि हम सरकार की पैरवी करें, है ना, ताकि क्योंकि बंदे को चॉइस है, अच्छा भी कर सकता है बुरा भी कर सकता है। तो सरकारी तरफ कहा, सरकार से कहा गया, लेकिन दर हकीकत यह सब पूरी दुनिया के लिए आयत, पूरी दुनिया के लिए, पूरे नाश के लिए आयत है, लेकिन खुसूसन सरकार को मुखातिब किया गया। वह अंजिर आशीरतक अकरबीन, और अपने और आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराए। उसके बाद पहले तो सरकार को कहा कि तुम सिर्फ मेरी इबादत करना, किसी दूसरी इबादत न करना, फिर उसके बाद कहा कि अपने करीबी रिश्तेदारों को डराए। जब ये आयत आई थी, जब सरकार ने जब रिसालत का ऐलान करा था, उससे 3 साल बाद ये आयत आई थी कि तुम अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ। तो ये बहुत बड़ा मशहूर वाक़ा है कि अब्दुल मुत्तलिब के अलैहिस्सलाम के घर में सरकार ने बनी हशम के 40 लोगों को जमा करा था, उसमें भी चचा भी थे और सारे सारे आए थे। तो उसके अंदर सरकार ने पहली बार ऐलान किया, दावत भी दी थी, मौला अली भी वहीं मौजूद थे, वो कहा था कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, क्या तुम मुझे मानोगे? तो उस वक़्त मौला अली ने सरकार की नुसरत करी थी और कहा था आप हक नबी हैं। तो उस वक़्त सरकार ने कहा था कि अली तुम मेरे जानशीन हो, उस वक़्त से ऐलान है मौला अली की जानशीनी का। तो उस वक़्त दूसरों ने उसे माने नहीं थे, उनके ख़ानदान के लोग नहीं माने थे, तो उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया था। तो वो जब ये आयत नाज़िल हुई, तो उस वक़्त सरकार ने अपने ख़ानदान के 40 लोगों को दीन की दावत दी थी। वक्फ जनाहा का लिमन तबा का मिनल मुमिनीन, और साहिब ईमान में से जो लोग आपकी पैरवी करने वाले हैं आप उनके लिए अपनी बाजुओं को झुका रखें। तो जो भी मोमिनीन है, सरकार को अल्लाह ने हुक्म दिया कि जो साहिबान ईमान उनके सामने अपने बाजू को झुका दो, इस तरीके से जिस तरह से चुड़िया अपना पर झुका देती है जब उसके बच्चे आते हैं ताकि उसकी प्रोटेक्शन आ जाए अपनी माँ के, इस तरीके से तुम मोमिनों को सहारा दो, उसे शफ़क़त से पेश आओ, शफ़क़त से पेश आओ, शफ़क़त से पेश आओ। फ़इन असौगा फ़कुल रब्बी बरी मिम्मा तअमलून, बस अगर वो आपकी नाफरमानी करें तो आप फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारे अमल से बेजारी का ऐलान करता हूँ। सरकार का काम सिर्फ खोल के बयान करना था। बनी हाशिम के लोगों को उन्होंने कहा था कि देखो मेरा अमल मेरे साथ है, तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ, तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ। वो तवक्कल अलो अजीज और रही, और उस हस्ती पर तवक्कल कीजिए जो गालिब और मेहरबान है। तवक्कल तो अल्लाह पे जो गालिब और मेहरबान है। गालिब किसके लिए? ताकि वो अपने दुश्मनों को आजाद की ताकत रखता, मेहरबान मोमिनीन पे ताकि अपने गुनाहों को बख्शे। अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम, वो तकल्लुब का फिर साजदी, और वो देखता है जब आप कयाम फरमाते हैं और सजदे करने वालों में आपकी गर्दिश को भी, अल्लाह सुब्हान तआला वो है जो आप सजदा करते जब आप कयाम करते हैं खड़े होते हैं नमाज के लिए, या आप सजदा करने वालों के साथ होते हैं तो आपको देखता है, जाहिर आपको देखता है। लेकिन इस आयत से दूसरी मुरादें भी जो कि पांचों छठे माम से हैं कि इस आयत से खास मुराद ये है कि रसूल का नूर सारे अल्लाह हजरत आदम से लेके अपने वालिद तक जिन सुलबों में आया रसूल का नूर, वो सब सब के सब मोमिन थे और एक खुदा की परस्तिश करते थे। इस आयत से खास मुराद ये है कि रसूल का नूर जिस तरह से मुंतकिल हुआ आदम से लेके आखिर तक अब्दुल्ला तक, इस आयत से ये मुराद है जिस तरीके से अल्लाह ताला ने देखा उस दाखिल नूर को और अल्लाह ने उसकी हिफाजत करी सरकार के नूर की। दूसरा जब सरकार ने फरमाया कि जब मैं सजदे से रुकू से जब उठू तो तुम मेरे पीछे उठना अपने सहाबा से का, और जब सजदे में रुकू में झुकूँ तो मेरे बाद झुकना, क्योंकि जिस तरह मैं आगे देखता हूँ इसमें पीछे भी देखता हूँ। तो सरकार को कुदरत थी, इन वो समी अलीम, बेशक वही है जो समी और अली है। अल्लाह सुब्हान अल्लाह के तार ये जो चीज़ें होती हैं मेरे कुदरत से होती हैं, क्योंकि मैं सुनने वाला भी हूँ जानने वाले हूँ। हल उनब्बेकुम अला मन तनज़्ज़ुलु शयातीन तनज़्ज़ुलु अला कुल्ले अफ़ाकिन अथीम यलक़ून सआव अक्तरहुम काज़िबू। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शयातीन किस पर उतरते हैं? जैसे पहले की बात हो चुकी है, शयातीन किस पर उतरते हैं? झूठों पर। शयातीन की फितरत ही है कि झूठ लेके जाए और सच झूठ को सच बना के पेश करे, झूठ को खूबसूरत बनाए और उसको सच बना के पेश करे। वो उतरते हैं हर झूठे घड़ने वाले गुनाहगार पर, झूठे अफ़ाकिन अफ़ीम झूठे गुनाहगार पर ये उतरते हैं, शयातीन के कल उनके उतरते रहते हैं, जो कि वो सुनते हैं युलकुना अस्सलाम अक्तरहुम काज़िबून, जो कि सुनने रहते हैं और वो झूठे होते हैं। ये जो झूठे मक्कारे सुनने बैठे रहते हैं कुछ कुछ बातें शयातीन की आए ताकि उसको फिर लोगों में फैलाते फिरें ताकि फितना बर्पा करें। आप जितने थे, अब आप जितने देखें कुफ्फार थे, वो सारा झूठ अबू सुफियान ने और सारे कुफ्फार कुरैश थे, सभी झूठ शयातीन के साथ, सारे शयातीन के दोस्त थे, शयातीन के साथ काम करते थे और झूठ फैलाने में लगे रहते थे। ये हरकतें बनी अब्बास ने करी, ये हरकतें बनी उमैया ने करी, झूठ फैलाना फितना कराना। वश्शुराउ यत्तबिउहुमुल गाबून अलम तर अन्नहुम फी कुल्ली वादीन यहीमून वो अनहुम यकूलून मा ला यफअलून। फिर इसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने शोरा की बात करी, शायर की बात करी। क्या कही अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने? शोरा वो है कि बहके हुए लोग जिनकी पीछे चला करते हैं, क्या तुमने देखा नहीं कि वो हर वादी में भटकते फिरते हैं और वो ऐसी बातें कहते हैं जिन पर खुद अमल नहीं करते। शोरा की कि अल्लाह ने मजम्मत करी, सख्त मजम्मत करी स्टोरी टेलर की, क्योंकि बहके वाले उनकी पैरवी करते हैं। क्या तुमने देखा नहीं कि वो हर वादी में भटकते फिरते हैं और वो ऐसी बातें कहते हैं जिन पर जो खुद अमल नहीं करते हैं। ये शोरा की खासियत है। तो शोरा की मजम्मत क्यों है अल्लाह की नजर में? क्योंकि शोरा लोग हक नहीं बयान करते हैं, वो एक अपनी फिक्र में चले जाते हैं, उनकी खुद की जाती फिक्र होती है। अब उसमें उसमें कितना झूठ होगा और कितनी उनकी ख्यालात होंगे जो कि सिर्फ उनके ख्यालात हैं, और रोमांटिक ख्यालात और बाकी ख्यालात और जो उनके समझ में आता है वो अपनी ले में जो समझ में आता है कहते चले जाते हैं। अब वो कहते चले जाते हैं और जो लोग जाहिल लोग होते हैं उनको वो शोरा बहुत शायद बहुत पसंद आते हैं, तो वो एक तरीके से उनके पैरोकार बन जाते हैं। ये शैतान है, क्योंकि जो कुरान जो नाजिल हुआ ये हक किताब है, हक खुदा का है, पाक किताब है, और जो शायर होते हैं उसके बरखिलाफ होते हैं, जो उनको समझ में आता है, जो उनके दिमाग में आगे बात कह दी उन्होंने गलत छलत जो भी हो। तो अल्लाह सुब्हानहु की सख्त मजम्मत करिए, सरकार ने भी शोरा की सख्त मजम्मत करिए। तो फिर क्या कहा अल्लाह सुब्हान, क्या तुमने देखा नहीं कि वो हर वादी में भटकते फिरते हैं। हर वादी भटकने से क्या मतलब है, क्या मानू भटकना फिरना, यानी कि उनके ख्याल जहां चले गए बस, अब उसी में वह आगे चले जाते हैं, बस उनकी कोई उनको रोकथाम करने वाला कोई नहीं, और लोग उनके पीछे चलते हैं। वो इन्हम यकूलून मा ला यफ़अलून, और वो ऐसी बातें करते हैं, कहते हैं जो करते नहीं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं शायद कोई कुछ करते करते नहीं। इल्ला लदीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व ज़कुरुल्लाह कसीरन कसीरन वन तसिरु मिन बादी मा ज़ुलिमु व सयअलमुन लदीना ज़लमु अय्यु मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मगर वो लोग जो ईमान लाए, नेकी काम करते हैं और अल्लाह को बहुत ज्यादा याद रखते हैं, और जब उन पर जुल्म होता है तो उसके बाद उन्होंने उसका बदला लिया, और जालिमों को जल्दी पता चल जाएगा कि किस अंजाम से उनका साफ़ा होगा। अब ये जो आयत है आखिरी आयत है सूरह शोरा की, अल्लाह ने कहा कि नहीं, फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसे शोरा भी हैं, क्योंकि जब ये आयत आई थी तो सब मोमिन परेशान हो गए थे कि क्या शेर शायरी से क्या पूरे दूर हो जाए क्या। तो ये आयत ने उस बात को की तफसील बयान करी कि नहीं, वो मोमिन जो मोमिन है जो शायर, वो मोमिन शायर जो के ईमान लाए और नेक अमल करे, वो जो अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करते हैं, ज़िक्रुल्लाह कसीर है, ज्यादा याद करते हैं, और जब उन पर जुल्म होता है तो उसके बाद उन्होंने उसका बदला लिया, तो क्या होता है, मैं रुकता हूँ, जुल्म के बाद बदला क्या हुआ, क्योंकि कुफ्फार लोग शायरों लेके आते थे, वो रसूल के खिलाफ शायरी पढ़ते थे, तो मोमिनीन ने भी, जो मोमिन थे उन्होंने भी शायरी पढ़ना शुरू करी, हक की शायरी पढ़ी, अल्लाह की उसमें वकालत में शायरी पढ़ी, तो अल्लाह ने उन शायरों की तारीफ करी, कहीं नहीं ये इनकी तारीफ है। तो इसके बारे में बहुत सी हदीसें भी हैं, खूस जो एलिबेत शायर थे उनके लिए भी बहुत सी हदीसें हैं। तो सरकार ने फरमाया कि बेशक मोमिन जिहाद करता है तलवार से भी और जबान से भी, इन मोमिन शायरों के बारे में फरमाया सरकार ने, मैं जिसके कब्ज़ कुदरत में मेरी जान है उसका वास्ता दे के, सरकार ने कहा कि इन जो शायरों की मिसाल इस तरह से है जैसे उन्होंने अपने तीरों से उनका खून बहाया कुफ्फारों का, शायरी करके हक की शायरी करके। और इसमें जो ज़िक्रुल्लाह कसीरन के बारे में हम ज़ाफ़र सलीम फरमाते हैं कि सबसे मुश्किल काम ये कि अल्लाह का जिक्र कसरत से करना, तो उन्होंने कहा कि कसरत से जिक्र मतलब ये नहीं कि आप तस्बीह अरबा पढ़ो, वो तो जहर करना है ये तस्बीह अरबा, लेकिन असल मतलब ये है कि जब भी आप कोई काम करो तो देखो कि हलाल के हराम काम है, उसको कहते हैं ज़िक्रुल्लाह कसीरन, जो भी काम करो उसमें हलाल देखो हराम से बचो। फिर आखिर जो आयत आई है उसमें यह है वो सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबून यनक़लिबून, ये जो आयत बड़ी मशहूर आयत है हर मजलिस के बाद मौलाना लोग पढ़ते हैं, क्या है इसका मतलब, इसका तर्जुमा क्या है, ज़ालिम को जल्दी पता चल जाएगा कि किस अंजाम से उनका साफ़ा होगा, मतलब कि ज़ालिम को मालूम पड़ जाएगा कि उनका साफ़ा किस अंजाम से होगा, जितने कुफ्फार हैं मुनाफ़िक़ हैं इनका अंजाम जहन्नम है, इनको जल्द मालूम पड़ जाएगा इनका अंजाम जहन्नम है, इसका अंजाम जहन्नम है। मौला हुसैन की मजलिस के बाद ही ये आयत पढ़ी जाती है, क्योंकि जो एलएलबी पे जो ज़ालिमों ने ज़ालिम किए हैं, जितने जुल्म हुए उन पर शुरू से लेकर आखिरी तक, जब से शुरू हुए जब से कि सरकार ने अपनी नबूवत का ऐलान करा था, जब से जुल्म आज तक हो रहा है, शियों पर आज तक हो रहा, मतलब हर तरीके का जुल्म हो रहा है, हर तरीके से जाने जा रही हैं, तो जो ये जुल्म हो रहा है जब से इमाम हुसैन का जुल्म हुआ, ये सब इनको मालूम पड़ जाएगा उन्होंने जुल्म किए हैं, इसका अंजाम क्या होने वाला है। बोला एक बड़ा आज़ाद तो क़यामत के दिन होगा, लेकिन जल्द इमाम ज़ना तशरीफ़ ला रहे हैं, बोला हुसैन के खून का बदला लेने, और जितना भी अगले पे जुल्म हुआ उसका बदला लेने जल्द तशरीफ़ ला रहे हैं। दुआ करते अल्लाह सुब्हान तआला से कि जल्द उनका ज़हूर और हम के नासिर में शुमार हो। अल्लाह रहमतुल्लाह रहमतुल्लाह मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन।